त्रिलोक सार लेक्चर नंबर 4। ओम नमः शिवाय। सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाऊणं बलगोविन्दसिंहामणि किरणकलावरुणचरणन किरणं विमलयरणेमि चन्दं त्रिभुवनचन्दं नमस्सामि। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र विरचित यह त्रिलोकसार ग्रंथ है और उसकी टीका जो त्रिलोक सार है उसको हम पढ़ रहे हैं। हाँ, आज लेक्चर नंबर 4 चल रहा है और हम आए हैं पृष्ठ संख्या 8 पर। 8 ये विशुद्धिमती आरिका की टीका हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 8 नंबर का पृष्ठ है और यहाँ जो पहला ऊपर जो चित्र बना है उसके नीचे जो लिखा है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने 3 नंबर की गाथा पढ़ी थी तो उसमें ये बताया था कि संपूर्ण जो सर्व आकाश है उसके बहुमध्य भाग में लोक है जो असंख्यात प्रदेशी है और वो कितना है तो जगत श्रेणी के घन प्रमाण है। इतनी बात अपनी हुई थी, उसी के ऊपर अभी यहाँ विशेष ज्ञातव्य बता रहे हैं। 4 पॉइंट्स है उसमें। पहला पॉइंट है लोकाकाश अलोकाकाश के मध्य भाग में स्थित है, यानी पूरे आकाश के मध्य भाग में स्थित है। अलोकाकाश के मध्य भाग में नहीं कह सकते क्योंकि लोकाकाश अलोकाकाश ये दो अलग अलग बातें हैं। ऐसा क्यों लिखा उन्होंने अलोकाकाश के सर्वाकाश के मध्य में स्थित है ऐसा कहना बराबर है। मूल में ये तो उन्होंने अपनी ओर से बताया है। देखो लोकाकाश को छोड़कर अलोकाकाश होता है तो अलोकाकाश का बहुमध्य भाग कैसे होगा? पूरे आकाश का मध्य भाग कहेंगे तो ठीक है
और निकाल देंगे तो चलेगा लोकाकाश के मध्य
नहीं। लोकाकाश आकाश के मध्य भाग में स्थित है ऐसा हम कह सकते हैं। अतः जो आकाश के 8 मध्य प्रदेश है वे ही 8 प्रदेश लोकाकाश के भी मध्य प्रदेश बन जाते हैं ऐसा कहना ठीक है। पेंसिल से करेंगे हम इसको लोकाकाश, वैसे तो कॉमा की जरूरत नहीं थी। अलोकाकाश के मध्य भाग में नहीं, आकाश के मध्य भाग में स्थित है। अतः जो आकाश के 8 मध्य प्रदेश है अलोकाकाश के नहीं आकाश के, क्योंकि लोक को छोड़कर जो बाकी बचा उसको हम अलोक कह रहे हैं। तो जो आकाश के 8 मध्य प्रदेश है वे ही 8 प्रदेश लोकाकाश के भी मध्य प्रदेश बन जाते हैं। तथा सुदर्शन मेरु के नीचे ठीक मध्य में ये 8 प्रदेश स्थित है। अतः सुमेरु का मध्य भी इन 8 प्रदेशों पर ही होता है। अभी सुमेरु का मध्य है नहीं, उसके बेस का मध्य कहेंगे। नीचे वो 1000 योजन तो नीचे है जमीन के अंदर, और 1000 योजन नीचे जाके जो उसका वहां का जो व्यास है 1000 योजन नीचे जहां वो 10000 योजन व्यास है उसका, वहां के मध्य में लेना चाहिए। सुमेरु पर्वत ऐसा है, वो जमीन के अंदर नीचे 1000 योजन नीचे। अब 1000 योजन में तो लोक का मध्य कहाँ है? तो ये जो नीचे का तल है उसका राउंड जिसकी विड्थ डायमीटर 10,000 योजन की है उसका सेंटर पॉइंट निकालना चाहिए।
1,000
योजन नीचे हाँ हाँ सुमेरु के तल का मध्य भी सुमेरु का मध्य कहने से सुमेरु पर्वत तो हाइट वाला है उसका मध्य कहीं पर भी हो सकता है ना ख्याल में है ना हाइट वाइज अगर देंगे कि मध्य कहीं बीच में आ जाएगा लाख योजन का है तो 50,000 योजन में कहीं पर हो जाएगा और उसके तल के मध्य में सुमेरु का मध्य सुमेरु के तल का मध्य हाँ तल के मध्य भी नहीं सुमेरु के तल का मध्य भी सुमेरु का लिखा है ना तो का वैसे रखना के मध्य के तल का सुमेरु के तल का मध्य भी इन 8 प्रदेशों पर ही होता है मिला देखो 8 प्रदेश हैं लोकाकाश जो है वो सम संख्या वाला है हाइट वाइज विड्थ वाइज तो उसके मध्य दो दो पॉइंट आएंगे वो वही जिसको गोस्थनाकार कहा था तो ये 8 उसका मध्य लोकाकाश का मध्य कहाँ आता है जहाँ सुमेरु का मध्य है परंतु वो मध्य कहाँ होगा सुमेरु देखो ये आपके सामने जो फिगर है ना ऊपर लोकाकाश के तो वो 7 राज्यों ऊपर का है 7 राज्यों नीचे है तो मध्य लोग ऐसे एक सतह पर आ जाएगा अब उसका मध्य कहाँ है जहाँ जम्मू द्वीप का मध्य है वो सेंटर है अब ये जो सेंटर है तो वहाँ कहाँ से सेंटर लेना
जो 1,000 योजन नीचे जो
सुमेरु पर्वत जो नीचे है जमीन के अंदर वहाँ उसका जो मध्य है उसका मध्य लेना वहाँ पर अभी आगे कहीं आएगी बात ये विशेष मैंने सुमेरु के तल का मध्य अभी तो हम फॉर द टाइम बीइंग ऐसा लिखेंगे क्षेत्र परिवर्तन का प्रारंभ दूसरा पॉइंट गोस्थनाकार इन 8 मध्य के प्रदेशों से होता है अब यहाँ क्षेत्र परिवर्तन का विषय नहीं है परंतु क्षेत्र परिवर्तन किसको कहते हैं तो लोकाकाश के मध्य में ये जो 8 प्रदेश है उसको अपना जन्म स्थान बनाकर कोई जीव जन्म लिया वो केवल 8 प्रदेशों में नहीं समा जाता वो तो असंख्यात प्रदेश मिनिमम भी असंख्यात ही होते हैं भले वो निगोद वाली अवगाहना होगा निगोद की अवगाहना मान लेते इतनी है हमारी अवगाहना इतनी बड़ी है तो ये निगोद के जो उसके सेंटर के 8 प्रदेश है उसको ऊपर सुपर इम्पोज करके लोकाकाश के मध्य में कोई जीव जन्मा यानी वहाँ की अवगाहना वो 8 मध्य प्रदेश अभी इतनी उसके तो बहुत सारे प्रदेश हैं तो उतनी ही बार वहाँ पर जन्मा 8 मध्य प्रदेशों के अपने भी आत्म प्रदेश 8 उस पर सुपर इम्पोज करते हुए जन्मा तो असंख्यात प्रदेश उसने एक एक बार एक एक प्रदेश कवर हुआ अब उसके एडजेसेंट वाला एक एक प्रदेश अपने अवगाहना में समाता हुआ उसने जन्म लिया अब बीच में कहीं ना कहीं अन्यत्र जन्म होगा कि नहीं होगा उसका हो सकता है वही उसी प्रदेश को कवर करते हुए जन्मना कि बीच में अनंत काल चला जाए पर जब कभी वो क्रम से वहां आएगा तब गिनना काल गिनना वो क्रम तभी गिनना जब वो वहां जन्म लेगा तो वहां से शुरुआत होती है वो क्षेत्र परिवर्तन की इसलिए वो 8 मध्य प्रदेशों की बात उसमें भी आती है जघन्य अवगाहना वाला सूक्ष्म निगोदिया जीव अपने 8 मध्य के प्रदेशों को यानी आत्म प्रदेशों को इन 8 मध्य प्रदेशों पर स्थापित कर जन्म लेता है जितने आकाश प्रदेशों को वह रोकता है उतनी ही बार क्योंकि वो भी असंख्यात है लोक के प्रदेश भी असंख्यात है परंतु कौन सा वाला असंख्यात लेना वो निगोद वाला असंख्यात लेना उतनी बार क्योंकि हमको एक एक प्रदेश पर एक एक बार जन्म लेना है ना एक प्रदेश ही तो कभी होगा नहीं इसलिए उस प्रदेश को रोकते हुए वहां जन्म लिया उसने
वो वही जीव है, एक ही जीव लेना है,
एक ही जीव लेना है। उसी ने कितना काल में ये सारा परिवर्तन पूरा किया, उसको कहेंगे क्षेत्र परिवर्तन। तो उतनी बार मध्य प्रदेशों को इन पर स्थापित कर जन्म लेता है। हाँ, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त ही होगा वहां पर। वैसे तो इसलिए लिया क्योंकि वो जगन्य उगाना वाला लिया है ना, इसलिए उसको सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त कह सकते हैं। सूक्ष्म अवगाना वाला जीव लब्धि अपर्याप्त है, परंतु यहाँ मध्य के आठ प्रदेश उसने। अगर हम बादर निगोद लेते हैं, बादर निगोद तो वहाँ कैसे, किसके आधार से रहेगा, वहाँ पृथ्वी के आधार से तो रहता नहीं है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त। अब कोई भी जीव हो, उसकी जितनी अवगाहना है उतनी बार उसको वहाँ जन्म लेना है, वहाँ का पृथ्वी का ही भी क्यों ना हुए। अभी कौन होता है उसकी बात नहीं है। हाँ, वो इसलिए समझाने के लिए कहा कि सूक्ष्म सर्वत्र पाए जाते हैं। हमने तो स्टार्टिंग तो वहीं से की थी, स्वक्षेत्र में भी सूक्ष्म निगोदिया से जगन्य अवगाहना से शुरू करते हैं, और यहाँ तो परक्षेत्र परावर्तन है। फिर भी स्टार्टिंग में हमने सूक्ष्म निगोदिया वाले को लिया था, उसने अवगाहना को रोकते हुए वहां उसने जन्म लिया था। सूक्ष्म निगोद इसलिए कि उसको कोई आधार की जरूरत नहीं होती, इसलिए उस जीव को वहां लिया था। हाँ, अवगाहन जिसका मान लेते ना, एक स्क्वायर सेंटीमीटर है उसकी अवगाहना, या एक घन सेंटीमीटर है समझाने के लिए, तो वो घन सेंटीमीटर का जो मध्य आठ है उसको वहां पर रोकते हुए साठ प्रदेशों को सुपर इम्पोज करते हुए उसने जन्म लिया। अब वो एक घन सेंटीमीटर में जितने प्रदेश हो गए उतनी बार वहीं पर जन्म लेना है, बस इतनी बात है। उसके बाद असंख्यात बार जन्म लेने के बाद वो एडजेसेंट प्रदेश को अपने अवगाहना अपने वहां जन्म लेना है, उसको अपने जो वहां के आत्म प्रदेश है उसकी अवगाहना उस पर स्थित करके जन्म लेना है। फिर वो कितना बड़ा है छोटा है उसकी बात नहीं लेनी। आगे इन आठ मध्य बहुत बार आए, उसमें अनंत काल चला जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वहीं पर जन्म लेना चाहिए। हाँ, वहीं पर लेना है, बीच बीच में अन्यत्र जन्म तो लेगा ही।
नहीं
आया था ना, वही क्षेत्र परावर्तन की विशेषता है। हाँ, उधर ही ना, उधर ही अपने यहाँ हुआ था ना। नहीं, आप लोग नहीं आए थे क्षेत्र परावर्तन, पर यहाँ अपना हुआ था ना, उतनी बार वहाँ जन्म लेना। हाँ, ये जो सूक्ष्म निगोद का जो घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण जो उगाना है ना, उसमें आकाश के जितने प्रदेश आते हैं, समझाने के लिए लाख प्रदेश आते हैं, तो लाख बार वहीं पर जन्म लेना चाहिए। असंख्यात बार, पर कौन सा वाला असंख्यात? तो उसके अवगाहना, उसके अवगाहना वाला जो असंख्यात। देखो,
देखो यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो अनादि से मिथ्यात्व में भटक रहा है, वो कितना समय से भटक रहा है, इसके लिए पांच परावर्तन बताए। एक द्रव्य परावर्तन, उसके बाद में क्षेत्र परावर्तन। तो यहाँ जो मध्य के आठ प्रदेश है उसके बारे में विशेष अपने को यहाँ माहिती बता रहे हैं। तो वहाँ वे कह रहे कि अनंत द्रव्य परावर्तन होंगे जब एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। हाँ, तो वो क्षेत्र परावर्तन पूरा होने के लिए कैसा उसका टाइम गिनना, ये बात चल रही है। वो टाइम जो गिनने की बात हो रही है, तो उसमें जो आकाश के मध्य आठ प्रदेश है उसको आपने भी द्रव्य के आठ प्रदेश बनाते हुए कोई सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त जीव अपर्याप्त जीव वहां जन्म लेता है और वो असंख्यात प्रदेश को रोकेगा, लेकिन उसके आठ के जो उसके मध्य प्रदेश है, वो सुदर्शन मेरु के आठ मध्य प्रदेशों में
लोकाकाश के आठ मध्य प्रदेश
उसके ऊपर रख के मतलब ऐसा वो जन्म लेगा कितनी बार, तो असंख्यात बार, फिर उसके कंटिन्यू
गिनेंगे जब कंटिन्यू जब उस क्रम से वहाँ जाएंगे तब उसको काउंट करना।
देखो 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 हमें तो टाइम गिनना है ना, टाइम गिनना है तो आप मान लो पहली बार वहाँ जन्म लिया और बाकी इधर उधर 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 तो वो टाइम तो जाएगा। अभी मान लो आप नरक में गए 33 सागर तो आपका गिनने में आएगा, लेकिन अपना जो हाउसी गेम खेलते ना
वो मीटर इज ऑन, टाइम का मीटर से चालू रखना और जब जब वहाँ जन्मेगा तब तब उसको काउंट करना। देखो ये मान लेते ये मैंने ऐसा ये राउंड कर दिया, ये सेंटर है तो ये सेंटर में उसके सेंटर को वहाँ सुपर इम्पोज करते हुए उसने जन्म लिया, फिर उसके बाद वहाँ पर उतनी अवगाहना के साथ उसको असंख्यात बार जन्म लेना है और उतनी बार कभी यहाँ जन्म लेना, यहाँ जन्म लिया, यहाँ जन्म लिया, तो उसमें वो जन्म उसका जो
काल।
उसका जो काल है आयु का वो सब गिनते जाना, क्योंकि एक बार हमने मीटर ऑन कर दिया उसको, काल का मीटर इज ऑन। अभी कहीं पर भी जन्म ले, पूरे जो लोक में कहीं पर भी जन्म ले सकता है, कोई भी निगोद हो सकता है, पृथ्वी अग्नि वायु कुछ भी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, देवनारकी कुछ भी हो सकता है। जब वहां जाके उसने जन्म लिया आठ प्रदेशों को कवर करते हुए तब उसको तो वो असंख्यात बार तभी ये काउंट
नहीं,
हुआ।
नहीं, दो बार हुआ, फिर ऐसा तीन बार हुआ, ऐसा दस बार, हजार बार, करोड़ बार, असंख्यात बार होगा,
उसी में अनंत काल जाएगा।
तो उसके बाद उसके एडजेसन कोई प्रदेश है उसके उसको कवर करते हुए कहीं कितनी भी अवगाना से जन्म लेना,
छोटा ही होना चाहिए ऐसा नहीं, बड़ा होगा परंतु वो प्रदेश उसमें कवर हुआ,
साइड का एक प्रदेश, वो असंख्यात प्रदेश के बाजू का एक प्रदेश वो कवर करेंगे, ऐसा करते करते
नहीं, वो एक ही प्रदेश काउंट करना। और ऐसा नहीं कि ये जन्म ये तो प्रदेश काउंट करते जाओ, ऐसा नहीं करना, क्रम से जब आएगा तभी काउंट करना, अक्रम से तो बहुत बार आएंगे। ऐसा नहीं कि जिस प्रदेश पर जन्म लिया है उसको काउंट करते जाओ जब कभी, ऐसा नहीं, क्रम से ही उन प्रदेशों को कवर होना चाहिए।
हमारे अश्विन भाई कहते हैं कि हमने यहाँ किया था, पहले किया था क्षेत्र, मैंने कहा आपने क्षेत्र पर रहा था ना, आपने किया था यहाँ हमारे घर में घर को करा था।
कितने क्षेत्र परावर्तन, पूरा परावर्तन अनंत बार हुआ है, अनादि कहते किसको ये मालूम नहीं ना हमको, अनादि का काल जब ये ऐसा, अरे हमने ऐसे सब काल बिताया है, हम है ना अनादि से है, इसका अर्थ ही क्या है, नो बिगिनिंग, नो बिगिनिंग तो कितना पीछे चले जाओ, तो ये इतना किया हमने, सब हमारा बर्थ प्लेस है, एक एक प्रदेश अनंतो बार, और बाद में बाकी आएगी बातें, एक एक बर्थ समय है एक एक हमारा, बर्थ डेट भी नहीं। हाँ देखो अभी ये तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। हाँ आपका प्रश्न है कौन से दिशा वाला एडजेसन, कोई भी दिशा वाला हो वो टचिंग टू दैट फर्स्ट प्रदेश, हाँ वो आठ के सराउंडिंग से शुरुआत करेंगे हम ना, आठ है सेंटर में रखेंगे तो उसके किसी भी दिशा में, पर उसको वो टच करता हुआ उस वहां चला जाना चाहिए। चलो तीसरा पॉइंट, इन आठ मध्य प्रदेशों के अवलंबन से लोकाकाश की चार दिशाओं का व्यवहार होता है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आदि जो कहेंगे उसको चार दिशाओं का व्यवहार होता है। अरहंत केवली चौथा पॉइंट, तेरहवें गुणस्थान के अंत में जब केवली समुद्घात करते हैं तब लोक पूर्ण अवस्था में, इन्हें लोक पूर्ण समुद्घात जिसको कहते हैं, इन आठ मध्य के प्रदेशों पर केवली के आठ मध्य प्रदेश स्थित होकर लोकाकाश को व्याप्त करते हैं। क्या कहना चाहते हैं, वो मध्य पॉइंट कहाँ है, वो मेरु के सेंटर में, और कोई मुनिराज मान लेते अपनी यहाँ विराजमान है, केवली हो गए, अब वो तेरहवें गुणस्थान का अंत समय आया और उन्होंने केवली समुदाय कर दिया, वो दंड कपाट वगैरह सब हो गए, तो जब पूरे लोक में उनके पूरे प्रदेश फैल गए तो जितने लोक के प्रदेश है उतने ही एक जीव के प्रदेश है, तो नेचुरली भले मुनिराज यहाँ स्थित है और पहले तो उनके आत्मप्रदेश उनके शरीर प्रमाण थे, अब पूरे लोक में फैल गए, तो जो लोक का मध्य होगा वही उनके आत्मप्रदेशों का मध्य होगा। ये तो नेचुरल है ना, भले अभी वो एक कोने में स्थित है, भले वो भरत क्षेत्र में हो कि विदेह में हो कि कहीं पर भी स्थित हो, या किसी ने उनको पटका कर वो मानसोत्तर पर्वत के पास रख दिया हो, फिर भी क्या होगा,
उनके मध्य प्रदेश लोका का
हाँ, वहां से कोई अगर केवल ज्ञान प्राप्त करता है और वहां से केवली समुदाय करता है तो की बात है, समझ में आई, क्योंकि पूरे में फैल गया है ना, तो दोनों का मिड पॉइंट तो एक ही होगा। वहीं पर होगा नेचुरली ना, क्योंकि पूरे लोक में फैले हैं, हाँ दोनों का मध्य एक ही है, दोनों का वॉल्यूम एक है, तो मध्य एक जगह ही आने चाहिए। अभी आगे चार नंबर को पढ़ने जा रहे हैं, अथ यानी अब, लोक विप्रतिपत्ति निरासार्थम आह, विप्रतिपत्ति यानी वो तो अन्यथा स्वरूप जो मानते हैं ना अन्यमति, तो लोक के अन्यथा स्वरूप, नीचे लिखा देखो हिंदी में, लोक के अन्यथा स्वरूप के श्रद्धान को दूर करने के लिए कहते हैं। क्या अन्यथा स्वरूप अन्यमति कुछ कुछ अन्य मान रहे है, तो उसके लिए ये एक गाथा में हमारे जो जिनमत है उसका प्रस्तुतिकरण होता है और उसी के द्वारा अन्य मतियों का निराकरण होता है। इसको मतार्थ कहे, अपने मत की पुष्टि मंडन और अन्य मतियों का खंडन, एक ही ये दो लाइन में हो जाता है। देखो, लोगो अकिटिम खलु अनायिनि हणो सहावण्युवत्तो जीवा जीवे ही फुड़ो सौवागासवयवो निचो लोक अकृत्रिम खलु अनादि निधन स्वभाव निर्वृत्त जीवा जीवे ही स्फुट सर्वाकाशावयव नित्य। खलु यानी निश्चय से है ना, ये लोक कैसा है तो अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम तो हमने मत बता दिया अपना, इसी से ईश्वर ने इसको निर्मित किया है, इस मत का खंडन हो जाता है। अकृत्रिम है, अनादि निधन, अनादि निधन है, अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है, अनादि अनिधन ये शब्द तो मालूम है ना आपको, तो अनादि निधन है ये कहने से, अभी कोई इसको उत्पत्ति करने वाला है, कोई रक्षण करने वाला, कोई इसका नाश करेगा, इस मान्यता का खंडन हो जाता है। यहाँ पर भी है ना, ये तो यहाँ तो ये तो विश्व का संहार होने वाला है, ये सब साइंटिस्ट ने आगाही कर दी, ये अमुक की तारीख को सब हो जाएगा, तो लोग घबरा गए है ना। आगे कहते स्वभाव से निष्पन्न स्वभाव निवत्तो स्वभाव निर्वृत्त, यानी अपने स्वभाव से ही है, यानी उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, स्वभाव से ही है, उसको कहेंगे स्वभाव से निष्पन्न है, निष्पन्न उत्पन्न, उत्पन्न यानी उसका कोई समय नहीं है कि वो उत्पत्ति हुई, ऐसा मत लेना उसका अर्थ, ये समझे, स्वयं सिद्ध हमने देखा था पंचाध्यायी में, मंगलाचरण रोज करते हैं, जिसे द्रव्य जो है वो स्वसहाय और वो स्वयं सिद्ध है, तो इनका जो समूह है वो भी है और है, किसी ने उत्पन्न किया नहीं है, अपने स्वभाव से ही है। और कैसा है, जीवा जीवा जीवादि, ये जीवा जीवादि का अर्थ क्या है, जीव और अजीव आदि, तो कितने द्रव्य आए इसमें, छह द्रव्य आए ना, जीव द्रव्य और अन्य अजीव द्रव्य तो पांच है, तो जीव और अजीव द्रव्यों से सहित है, जीवा जीव ही स्फुट, यानी ये लोक क्या है तो उसमें छह द्रव्य पाए जाते हैं, तो जीव और अजीव द्रव्यों से सहित है, उससे युक्त है। और कैसे, सर्वाकाश अवयव और नित्य, सर्वाकाश के अवयव स्वरूप, अवयव ने सर्वाकाश का है, पूरे आकाश का ही वो एक भाग पार्ट एंड पार्सल है, उसी का अवयव, उसी का मध्य में एक रचना है, जिसको अन्य जो सभी द्रव्य पाए जाते हैं ऐसी जहाँ ये रचना है उसको कहेंगे वो पूरे आकाश का ही अवयव है, पूरे आकाश का ही वो पार्ट है, आकाश से कुछ भिन्न तो है ही नहीं है। लोकाकाश कहेंगे तो आकाश द्रव्य का एक बीच के असंख्यात असंख्यात प्रदेश है, पूरे अनंत आकाश के प्रदेश है, उसमें से सेंटर के जो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है उसको हम लोकाकाश कहेंगे। ये केवल आकाश हुआ लोकाकाश कहने से, हम कह रहे लोक, लोक कहने से उसमें सभी छह द्रव्य आ गए। लोकाकाश कहने से आकाश का वो एक भाग आ गया और लोक कहने से हाँ पूरा विश्व कहेंगे हम उसको, छह द्रव्य आ गए उसमें, क्योंकि वहाँ आकाश द्रव्य तो है ही है, धर्म है अधर्म है, सभी अनंत जीव उसी क्षेत्र में रहते हैं, अनंत पुद्गल वहीं रहते हैं, और कालानु जो कहेंगे एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित है वो भी उसी क्षेत्र में रह रहे हैं। तो ये पूरे आकाश के अवयव स्वरूप है और कैसा है तो नित्य है। तो नित्य है कहने से भी अन्य मतियों का बिल्कुल खंडन हो जाता है कि इसका नाश हो जाएगा, कोई इसका नाश करेगा, ये सारी जो भ्रांत कल्पनाएं हैं उनका निराकरण हो जाता है। पहले भी उन्होंने बताया था किसी ने धारण किया नहीं है या कहेंगे बस यह है अपनी स्वयं रचित है। विशेषार्थ लोक का अधिकार तो था ही, किंतु यहाँ लोक शब्द का ग्रहण शून्यवादी का निराकरण। देखो लोक कहने से ही शून्यवादी ने कुछ है ही नहीं मानने वाले भी है ना, तो लोक है बस इतना कहने से उसके अस्थि सिद्ध कर दी तो शून्यवादी का भी निराकरण हो गया। बाद में वो स्वयं निर्मित है क्या वो चर्चा तो बाद में, पहले मैंने पहले लोक इतना कह देने से देखो लोग ये अभी हमने देखा है ये अकृत्रिम है वगैरह वगैरह। अब यहाँ लोक विशेषार्थ पढ़ रहे हैं, लोक का अधिकार तो था ही किंतु यहाँ लोक शब्द का ग्रहण शून्यवादी का निराकरण और लोक है इसकी सिद्धि के लिए किया गया है। क्योंकि कोई भी शब्द है तो उसको कहेंगे उसका जो शब्द है तो वो बताने वाला है, तो उसका वाच्य कोई पदार्थ होता ही होता है। आप कहेंगे आकाश का फूल होता है क्या?
आकाश का
फूल हाँ। इसे प्रश्न आप पूछ सकते हैं, हम कहेंगे आकाश शब्द है तो आकाश है, फूल नाम का शब्द है फूल भी है, अरे आकाश का फूल कोई नहीं है, पर आकाश शब्द है तो उसका वाच्य पदार्थ भी है। ऐसे ही लोक शब्द है तो उसका वाच्य पदार्थ भी है, वहां पर लोक नामक कोई वस्तु वहां पर है, एंटिटी है वहां पर। तो कहते लोक है इसकी सिद्धि हुई। शून्यवादी कुछ नहीं मानते हैं, बस एक आत्मा है बाकी कुछ है ही नहीं, सब माया है सब माया है, ऐसा कहने वाले आपको सुना होगा किसी को, तो उनका निराकरण हो जाता है। अकृत्रिम इस पद से, पद यानी शब्द वर्ड, अकृत्रिम पद से लोक का कर्ता ईश्वर है इसका खंडन किया गया है। वो ईश्वर मतवादी ऐसे मानते ईश्वर ने इसकी उत्पत्ति इसकी रचना कर दी है, तो किसमें से कर दी, क्या रॉ मटेरियल कुछ होना चाहिए था है ना, तो विश्व नहीं था तो ईश्वर कहाँ रहता था, ये सो मेनी क्वेश्चन आए। और वो उसको रचने की क्यों इच्छा हुई, तो इच्छा है ना, वो तो वितरागी नहीं है क्योंकि कुछ करने का विकल्प है ना उसको, करता हो गया वो सबका। अनादि निधन इस पद से, हमने वैसे देखा ही था पढ़ने के पहले भी, इस पद से सृष्टि का संहार मानने वाले मत का खंडन किया गया है। यानी कोई भगवान है और वो उसको एक ने निर्माण किया एक रक्षण कर रहा है और अभी कुछ काल के बाद उसका संहार कोई कर देगा, तो कहते उस मत का खंडन होता है। स्वभाव निर्वृत्त इस पद से परमाणु द्वारा लोक का आरंभ हुआ है इस मान्यता का निरसन किया गया है। ऐसे कोई मानने वाले हो गए शायद पंच महाभूत से वो जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहते हैं यानी लोक का आरंभ हुआ है, यानी वो छोटे से बढ़ते बढ़ते गए ऐसा कोई मानता होगा। निर्वृत्त रचना यानी अपने आप से है, बस अपने स्वभाव से ही रचित है, यानी उसके बिगिनिंग नहीं मानना वहां पर। जीवा जीवई ही स्फुट इस विशेषण से स्फुटने खरेखर है वहाँ पर जीव और अजीवीय, लोक मायामय है, इस मान्यता का खंडन किया गया है। क्योंकि वो क्या मानते हैं, अन्य कुछ है ही नहीं है, बस एक है और वो भी एक ईश्वर के अंश है और बस मैं ही हूँ। सर्वाकाशावयव, इस विशेषण से जो अलोकाकाश का अभाव मानते हैं उनके मत का निराकरण किया गया है। पूरे आकाश का ये एक अवयव है, यानी इसके बाहर भी अनंत 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 आकाश है। नित्य, इस पद से लोक को क्षणिक मानने वाले क्षणिक मत का खंडन किया गया है। इस कथन से जो देखा जाता है उसे लोक कहते हैं, देखा जाता है ने पाया जाता है, लोक्यते इति लोक है, यानी वो संस्कृत में धातु है ना, जहाँ दिखाई देते हैं, देखा जाता है उसे लोक कहते हैं। अथवा छह द्रव्यों के समवाय को लोक कहते हैं, समवाय ने समूह, जहाँ छह द्रव्य पाए जाते हैं उनके समूह को लोक कहते हैं। अब 10 नंबर के पृष्ठ पर हम आए हैं। इदानीम तद आधारस्य आकाशस्य लोकत्वम उच्यते। अब षट द्रव्यों के आधारभूत आकाश को लोक कहते हैं, यह तो छह द्रव्यों के समूह को भी के लोक कहा और उसका जो आधार है उसकी बात अब करेंगे। धम्मा धम्मा गासा गदिरा गदिजीव पोगलाणं च जावत तावत लोगो आया समदो परमणंतम धर्मा धर्माकाशा गतिरा गतिजीव पुद्गलयो च यावत तावत लोक आकाशम अतः परमणंतम। धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य आकाश द्रव्य धर्मा धर्म आकाशा, गति ही आगति ही लिखे ना, और गति आगति करने वाले जीव एवं पुद्गल, क्या कहते हैं छह द्रव्य बता रहे हैं। एक तो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, गति आगति करने वाले कौन है, जीव है और पुद्गल है, गमन और करने वाले और रुकने वाले द्रव्य। तथा च शब्द से पुद्गलयो हो च लिखा है ना, काल द्रव्य जितने आकाश को अभिव्याप्त करते हैं, अभिव्याप्त करने ने व्याप्त करना यानी उसको उसमें फैल जाना, उसमें कवर करते हैं, जिसमें व्यापते हैं, जितने आकाश को व्याप्त करके रहते हैं उतने आकाश को लोक कहते हैं। इसके आगे अलोकाकाश है जो अनंत है। यावत तावत लोकम, देखो क्या कहते हैं, यावत यानी जहाँ तक, कौन कौन है, धर्म है अधर्म है आकाश है वो गति अगति करने वाले जीव पुद्गल है और काल द्रव्य है, यावत जहाँ तक पाए जाते हैं तावत यानी वहाँ तक लोक है ना, जितने आकाश को व्याप्त करते उतना लोक है। अतः परम अनंतम, अतः यानी इससे आगे, परम इसके पार उसके आगे अलोकाकाश है जो अनंत है। विशेषार्थ, जितने आकाश में छह द्रव्य पाए जाते हैं अथवा जितना आकाश छह द्रव्यों का आधार है उसे लोक कहते हैं। लोक के आगे अनंत अलोकाकाश है। आकाश द्रव्य में लोक और अलोक का विभाजन धर्म अधर्म द्रव्य के कारण हुआ है। देखो ये क्योंकि धर्म एक ही द्रव्य पूरे लोकाकाश समान उतने एरिया में फैला हुआ है, अधर्म द्रव्य भी उसको इतना ही फैला है, उसको व्यापी द्रव्य भी कहते हैं, पूरा व्याप होने वाला, तो कहते हैं वो विभाग उनके कारण हुआ, ऐसे भी कथन आता है शास्त्र में। आप क्या कहेंगे, वहां तो कालानु नहीं है क्या, वहां क्या जीव नहीं है क्या, वहां तो पुद्गल नहीं है क्या, तो ये कथन पद्धति है, पूरे में व्याप्त होकर रहने वाला है तो उनके कारण ये विभाजन हुआ ऐसा कहते हैं। ये धर्म अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल की गति व स्थिति में कारण है, उसको गति आगति कहा था। अब 6 नंबर को पढ़ेंगे हम। अथ पर परिकल्पित लोक संस्थान निराकरणार्थम आह। पर परिकल्पित, अन्य के द्वारा जो कल्पना की हुई है, परिकल्पित यानी अपने मन से, मन गणंत कहो, कल्पना द्वारा जिन्होंने वर्णन किया है, ऐसे जो लोक संस्थान यानी लोक का आकार और उसका निराकरण करने के लिए अब कह रहे हैं। नीचे क्या लिखा हिंदी में देखो, अब अन्यवादियों द्वारा यानी परमत के लोगों द्वारा परिकल्पित यानी उन्होंने जो कल्पना में काल्पनिक लोक रचना के निराकरण हेतु कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी लोक के अलग अलग आकारों का वर्णन किया है, उसका यहाँ से निराकरण हो जाता है। अभी हम 6 नंबर को पढ़ेंगे। उभ्यदलेक मुरवद धय संचय सन्निहो हवे लोगो अद्धदयो मुरवसमो चौदश रज्जुदो सौवो उद्भूत दलैक मुरज ध्वज संचय सन्निभो भवेत् लोकः अर्धोदय मुरज सम चतुर्दश रज्जुदय सर्वः। लोक का आकार खड़ी यानी उभी डेढ़ मृदंग के सदृश है। ये डेढ़ मृदंग के सदृश है यानी क्या है, नीचे आधा मृदंग और ऊपर एक मृदंग, इसको डेढ़ मृदंग के सदृश कहेंगे। मृदंग कभी देखा है क्या? मृदंग देखा है, कैसे होता है? हाँ ऐसा ऐसा है वो, ऐसा दोनों ओर टिपरेंगे, आड़ा आधा देखेंगे। हाँ वो देखो ना, अपने कल हमने देखा था 7-8 पेज पर जो है, नीचे का आधा मृदंग और ऊपर का पूरा। ये मृदंग जो बजाते हैं ना, मृदंग गले में डालकर, देखा है कभी नहीं? हाँ हाँ, वो सेंटर में थोड़ा उसको तो, हाँ थोड़ा तो ज्यादा ज्यादा होता है और दोनों बाजू टेपरिंग होता है। लोक का आकार खड़ी डेढ़ मृदंग के सदृश है तथा मध्य में भी ध्वजाओं के समूह सदृश भरितावस्था स्वरूप है, शून्य नहीं है यानी पूरा घन स्वरूप है। हाँ घन स्वरूप है, हाँ घन घन है यानी शून्य नहीं, यानी जैसे पोला नहीं है। हाँ क्या कहते उसको, पोला कहते, क्या कहते?
हाँ
खोखला नहीं है अंदर, मृदंग ऐसे अंदर से कैसा है?
खोखला,
वो कैविटी है खाली। ऐसे लोग कोई कैविटी नहीं है, पूरा है, भरा हुआ है। ये नीचे 10 पेज में नीचे गाथार्थ पढ़ रहे हम। लोक का आकार, लोक यानी ना तीन लोक की बात चल रही, लोकाकाश में जो 6 द्रव्य है तो उसका आकार कैसा है, अन्यमति मानते वैसा नहीं है तो कैसा है वो कहेंगे। इससे सिद्ध होता है कि जो अन्यमति इनकी कल्पना है वो बराबर नहीं है। तो लोक का आकार खड़ी डेढ़ मृदंग के सदृश है तथा मध्य में भी ध्वजाओं के समूह सदृश भरितावस्था स्वरूप है, शून्य नहीं है। हाँ यानी पूरा सॉलिड सॉलिड जैसे भरा हुआ है। अर्ध मृदंग के समान अधोलोक यानी मध्य से नीचे जो अधोलोक कहलाता है वो नीचे बढ़ता चला जाता है ना, और हम जो चित्र देखते हैं वो तो एक फ्रंट व्यू देखते हैं, परंतु वो है थ्री डायमेंशनल है। तो ऐसे आगे पीछे 7 राजू प्रमाण फैला हुआ है, तो ये एक राजू बाय 7 राजू मध्य लोक है और पूरे चहुं ओर से वो नीचे तक ऐसा 7-7 राजू फैला हुआ है। अर्ध मृदंग के समान अधोलोक और एक मृदंग के समान ऊर्ध्वलोक है। हाँ वो आधा अर्ध मृदंग ही 7 राजू हाइट वाला है और ऊपर का पूरा ऊर्ध्वलोक है, वो 7 राजू में वो पूरा मृदंग है, यानी ऊपर का मृदंग छोटा लेना, नीचे का बड़ा लेना। तथा दोनों को मिलाकर सर्व लोग 14 राजू ऊंचा है। ये केवल हाइट वाइज बता दिया अभी उन्होंने। विशेषांक लोक का आकार डेढ़ मृदंग के समान कहा, उसका अर्थ यह नहीं है कि लोक मृदंग के समान बीच में पोला भी है। हिंदी में उसको पोला कहते हैं, गुजराती में पोलू कहते हैं, यानी अंदर कैविटी नहीं है। मृदंग के अंदर कैविटी होती है, वैसा नहीं है, किंतु वह तो ध्वजाओं के समूह सदृश भरा हुआ है। ये ध्वजाओं के समूह का क्यों वहां उदाहरण दिया पता नहीं लगा। पोला नहीं, अंदर कुछ समूह है, वो वैसे अलग अलग अन्य अन्य जीव भी इतने है सारे, और पुद्गल भी है। अर्ध मुरज की ऊंचाई, मुरज यानी मृदंग, अभी मृदंग की बात चल रही ना, ऊपर शब्द है ना, उद्भूत दलैक मुरज ध्वज संचय सन्निभो, ऐसा ये संस्कृत में लिखा था। तो एक अर्ध मुरज की ऊंचाई और एक मुरज की ऊंचाई मिलाकर संपूर्ण लोक की 14 राजू ऊंचाई कही गई है, उसी को उदय कहा। उदय ने ऊंचाई, यानी अर्ध मुरज भी 7 राजू वाला है, वो पूरा एक मुरज भी 7 राजू वाला है। यहाँ पर लोक को डेढ़ मृदंगाकार कहा गया है, उसका भाव यह है जैसे अर्ध मृदंग नीचे से चौड़ा और ऊपर संकरा होता है। संकरा है नैरोइंग, टेपरिंग है, हाँ। उसी प्रकार अधोलोक नीचे 7 राजू चौड़ा है और क्रम से घटता हुआ ऊपर 1 राजू चौड़ा रह गया है। इसके ऊपर एक मृदंगाकार ऊर्ध्वलोक कहा गया है, इसका भाव भी यह है जैसे मृदंग नीचे ऊपर संकरा और बीच में चौड़ा होता है, उसी प्रकार ऊर्ध्वलोक भी नीचे 1 राजू चौड़ा है, इसके ऊपर क्रम से बढ़ता हुआ बीच में 5 राजू चौड़ा हो जाता है। ये कहाँ होता है मालूम है? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर विमान के लेवल में वो 5 राजू होता है। नेचुरली 7 राजू है ना, तो 3.5 राजू ऊपर जाके वो चौड़ा हो जाता है ज्यादा मैक्सिमम। उसके एग्जैक्ट सेंट्रल लेना है वहां पर। पुनः क्रम से घटता हुआ अंत में 1 राजू चौड़ा रह जाता है। वो केवल उन्होंने एक फ्रंट व्यू की अपेक्षा बात बताई है। आप इमेजिन करो नीचे कैसा होगा, 7 राजू बाय 7 राजू, यानी नीचे ऐसा स्क्वायर होगा पूरा 7 राजू बाय 7 राजू का। देखो ये बेस है लोकाकाश का, 7 राजू ऐसा और 7 राजू दक्षिणोत्तर है, ऊपर तक ऐसा हो जाएगा। ऐसा होगा ने फ्रंट बैक जो है दक्षिणोत्तर कहते हैं, वो तो उतना ही 7 राजू रहेगा, परंतु ये 7 से टेपर होकर 1 राजू बन जाए। 135। देखो वो 3 डायमेंशन बताए ना, अपने भूगोल के पुस्तक में भी ऐसा चित्र बनाया। तो नीचे 7 राजू और ऐसा भी 7 राजू बताया, वो तो दिखाई देता है ही ना। अधिक काउंट करो, वो 1.5 इंच और ये भी 1.5 इंच लिखा है, परंतु हमको ऐसे प्रभास नहीं, वो तो ज्यादा बताया उन्होंने। यहाँ एक्चुअली फिगर निकालते समय उन्होंने एग्जैक्ट नहीं निकाली है, अपने चित्रों में वो एग्जैक्ट निकाली है। हमने तो उसको 1 राजू के लिए 4 सेंटीमीटर करके बड़े बड़े 4 बनाए थे। हाँ हाँ आप थे ना, गूगल में आई थी आप, बरोबर। तो यही कहना चाहते कि 3 डायमेंशनल है, अभी तो एक फ्रंट व्यू की अपेक्षा बता रहे, नीचे 7 राजू बीच में 1 राजू हुए।
तो ये 5 राजू थोड़ा बताया वो है ना,
वो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के पास वो 5 राजू है, परंतु ऐसे फ्रंट बैक लेंगे वो वहां पर भी 7 राजू ही है, यानी दक्षिणोत्तर सर्वत्र 7 राजू है, ऊपर से नीचे समान चौड़ाई है। और आगे 113 पर फिर बताया है 109, ये सब आते हैं, आने वाली बातें। वही ना, 1 राजू और 7 राजू ऐसा, ये सात राजू देखो ऊपर से नीचे तक सर्वत्र सात राजू, दक्षिणोत्तर उसको कहते हैं, तो दक्षिणोत्तर सात राजू है। और हम लेफ्ट से राइट को देंगे उसको पूर्व पश्चिम कहेंगे। ये नक्शा कैसे पढ़ना कैसे बोलना ये उसके तरीका है। और वहाँ पूर्व कहाँ है, वहाँ सूर्य कहाँ है, उसकी बात यहाँ नहीं लेनी। राइट साइड को हम पूर्व कहेंगे, लेफ्ट साइड को पश्चिम कहेंगे, और फ्रंट को हम दक्षिण उत्तर ऐसा कहेंगे। तो ये सर्वत्र यहाँ पूर्व, ये पश्चिम, लेफ्ट साइड को पश्चिम कहेंगे। हमारा बराबर है ना, हमारा भारत राइट साइड को पूर्व कहेंगे। भारत का नक्शा देखो ना, ईस्ट कोस्ट कहाँ कहेंगे, हमारा वेस्ट कोस्ट है।
फेसिंग नॉर्थ है ना, राइट साइड पे पूर्व हो जाएगा।
वो नॉर्थ फेसिंग वगैरह मत ले लो, नक्शा पढ़ते समय राइट साइड में पूर्व है, लेफ्ट साइड में पश्चिम है। आप नॉर्थ ईस्ट की बात ऐसे करेंगे, जो हम जो एक्चुअल है सबकी उत्तर दिशा एक होती है, नहीं समझे? पूरे पृथ्वी के लिए उत्तर ध्रुव कितने हैं, सबके उत्तर में है, और सबकी पूर्व अलग अलग है। भारत के लिए पूर्व है जापान, जापान के लिए पूर्व अभी उधर से चले जाओ अमेरिका है, और भारत उसके लिए पश्चिम हो जाएगा जापान के लिए। हम ऐसे राउंड अगर घूमेंगे तो हरेक की उत्तर सेम रहती है, हरेक का दक्षिण सेम रहता है, और हरेक की पूर्व पश्चिम बदलती रहती है। जहां से सूर्य उगेगा तो उसको वहां की पूर्व कहने में आएगी। ऐसे ही मेरू के जैसे सूर्य की जैसी प्रदक्षिणा होती है, वहां पर भी उस अपेक्षा से अगर देखेंगे हरेक क्षेत्र का अपना अपना पूर्व पश्चिम अलग अलग होगा, उत्तर सबका एक ही है। वो बात यहाँ नहीं है, लोकाकाश में हम राइट साइड को पूर्व कह रहे हैं, लेफ्ट साइड को पश्चिम कह रहे हैं, और आगे पीछे को दक्षिण उत्तर कह रहे हैं। 109 नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग उत्तर दक्षिण ऐसा नहीं, वो ऊपर और नीचे है। लोकाकाश ऐसा हम खड़ा दिखा रहे हैं तो उसमें राइट साइड में हम पूर्व दिखेंगे, देखेंगे चार्ट में जब देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पश्चिम कहेंगे उसको, क्योंकि पूर्व पश्चिम कितना फैला है, तो सात राजू एक राजू इस तरह से कहेंगे हम। और आगे पीछे ने दक्षिणोत्तर यहाँ लिखा है ना, देखो 109 पेज पर। हाँ हाँ, वहाँ दक्षिण और पीछे उत्तर। हाँ, हाँ हमारे है ना, पर यहाँ के देख लो क्योंकि आपके सामने है, भूगोल की पुस्तक भी लेके बैठो, उसमें भी यही चार बनाया है। वहाँ तो एक्चुअली प्रमाण लेकर बनाए हैं, तो आपको और आसान होगा। और ये पढ़कर ही बनाए हैं, हमने मन से नहीं बनाए हैं। ये सारे ही पुस्तकें अलग अलग जो है ना, त्रिलोक पन्नति है, त्रिलोक सार है, बहुत सारे, सबको पढ़कर उसके प्रमाण लेकर वहाँ बनाया हुआ था। हाँ देखो 11 पेज पर हम पढ़ रहे थे, अंत में चौड़ाई की राजू चौड़ा रह जाता है। मृदंगाकार कहने का यह भाव नहीं है कि लोक मृदंग के सदृश गोल है, मृदंग गोलाकार होता है, ऐसा नहीं है। यदि लोक को मृदंग के सदृश गोल माना जाए तो अधोलोक का घनफल 106 पूर्ण हुए और 261 बटे 1356 घन राजू, क्योंकि वो गोल बनाए उन्होंने, नीचे सात राजू का गोल बनाया, ऊपर एक राजू का गोल बनाया, जिसको हम कहेंगे ऐसा वेत्रासन जिसको कहेंगे, वो बैठने के लिए वो मुंह मुंडे आते थे ना, हाँ वैसा कोण में पॉइंट आता है ऊपर। अब ये पॉइंट नहीं लेना, ऊपर छोटा गोल और नीचे बड़ा गोल, तो उसका एवरेज निकालेंगे गोल का, वहां का क्षेत्रफल निकालेगा, उसको सात राज्यों से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर तो टेपरिंग है ना ऐसा, तो दोनों का सात, यहाँ नीचे सात व्यास है और ऊपर एक व्यास है, और उसका एवरेज निकालेंगे सात और एक आठ डिवाइडेड बाय टू फोर आ जाएगा, फिर उसका परिघ निकालें। और कल हमने जो सूत्र पढ़ा था, डायमीटर है, सर्कम्फरेंस निकालना है, और फिर हम उसको गुणा करेंगे त्रिज्या के आधे से, व्यास के चौथे भाग से, तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा। उसको हाइट से गुणा करेंगे तो घनफल मिलेगा। इसको वेत्रासन कहते हैं। मृदंग के समान गोल मानेंगे तो उसका घनफल अलग आएगा, और यहाँ घनफल अलग आता है, यही कह रहे। तथा ऊर्ध्वलोक का घनफल 58.67/1356 घनराजो प्राप्त होता है। इन दोनों को जोड़ने से मृदंगाकार गोल लोक का क्षेत्रफल, वो दोनों को मिलाकर 164.328/1356 घनराजो प्राप्त होता है। यानी ये ठीक नहीं है। जो 343 घनराजु के संख्यात्वे भाग प्रमाण है, यानी उसके आधे से भी कम है ना, तो संख्यात्वा भाग कहेंगे। अतः लोक चौकोर है, क्योंकि चौकोर लोक का घनफल सात राजु के यानी श्रेणी के घन स्वरूप 343 घनराजु प्राप्त होता है। ये धवला पुस्तक 4 में ये बात बताई है। अब ये आगे चलकर बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि ये जो है ना, नीचे सात है, फिर ऊपर लोग एक है, परंतु आगे पीछे ऐसा तो सात है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना, क्या है, वो सब उसका तरीका उसमें बता दिया है। जैसे मान लेते ऐसा फैला है, अभी ये गोलाकार फूल इस तरह से दो चिमटे हमने इकट्ठा लिया। अब इसका निकालना है तो क्या तरीका है, हम ऐसा करेंगे उसको और एक आयत स्क्वायर बनाएंगे और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आसान होगा। जैसे यहाँ हमने सात देखा था और ऊपर एक राजू देखा था, तो ऐसा उल्टा किया हमने, ये ऐसा किया तो सात और सात हो गया, आगे पीछे तो है ही सात, और हाइट वैजू ये तो 3.5 हो गया, क्योंकि दोनों का आधा आधा कर दिया ना, यहाँ ऊपर एक का भी आधा किया और सात का भी आधा किया। तो इस तरह से उसको काउंट करने कैसे करना हम आपको बताएंगे आगे, वो बात आएगी। यानी ये लोग की अलग अलग ऐसे पीसेस करके उसको उल्टा सुलटा फिट करके उसके एरिया निकाल सकते हैं, वो बात हम आपको आगे ये यहाँ बताएंगे। देखो यहाँ प्रसंग, देखो आगे संस्कृत पढ़ती हूँ पहले। अथ प्रसंगायात रज्जु प्रतीर्थ्य आह, रज्जु प्रतीर्थ्यर्थम आह, यानी रज्जु क्या है उसकी प्रतीति समझाने के लिए, यानी राजु क्या है उसका स्वरूप समझाने के लिए आह यानी बताते हैं, कहते हैं। नीचे लिखा ना हिंदी में, अब प्रसंगवश राजु का स्वरूप कहते हैं। अब यहाँ अंक संदृष्टि के द्वारा बताते हैं। अंक संदृष्टि का अर्थ क्या होता है, अर्थ संदृष्टि से दो शब्द आते हैं और अंक संदृष्टि से दो शब्द आते हैं। अंक संदृष्टि यानी फॉर एग्जाम्पल, यानी बड़ी बड़ी संख्याएं हमें मालूम नहीं है, तो हम हमारी जितनी छोटी संख्या है, जैसे हमने कल सर्वधारा देखे थे 1 से 100 में आपको फिट करके दिखाया था, तो ये छोटी संख्याएं जो हम जिनसे परिचित है उसको लेकर जो समझाया जाता है उसको कहेंगे अंक संदृष्टि। फॉर एग्जाम्पल लेके हम छोटी संख्याओं के द्वारा हमको तो भाव भाषण करना है कि कैसे उसको काउंट करें, किस तरह से उसका कैलकुलेशन करें। और अर्थ संदृष्टि होती है यथार्थ में, यथार्थ में जैसे असंख्यात है या जो अंगुल है, घनांगुल है, जो कुछ है उसके लिए कोई एक चिन्ह बनाया जाता है। जैसे असंख्यात का ऐसा चिन्ह करेंगे, संख्यात के लिए अलग चिन्ह कहेंगे, पल्ले के लिए अलग चिन्ह बनेंगे, अंगुल के लिए अलग, उसको संदृष्टि कहते हैं, उसका एक चिन्ह बनाया, सिंबल बनाया। यथार्थ में जो संख्या है उसके सिंबल बना के जो बताया जाता है उसको कहेंगे अर्थ संदृष्टि, और यह है अंक संदृष्टि। यहाँ अंक संदृष्टि यानी कुछ छोटी फिगर्स लेके हमें समझाएंगे, यहाँ तक ख्याल में। तो कहते हैं तो अभी गाथा का अर्थ बताते हैं।
गाथा पढ़नी
है? नहीं, गाथा ही पढ़नी, पहले पढ़नी है। जग सेड़ी सत्त भागो रज्जु सेढ़ी विपल्ल छेदानम होदिय संखे जदिम प्रमाण विंदम गुलाण हदी जगश्रेणी सप्तम भाग रज्जु श्रेणी रपि पल्ल छेदानाम भवतीय संखेय प्रमाण वृंदांगुलानाम हति ही। देखो यहाँ क्या कहते हैं, जगत श्रेणी सप्तम भाग। जगत श्रेणी किसको कहते हैं, तो सात राजू को जगत श्रेणी कहते हैं। अभी हमको मालूम नहीं राजू क्या है, परंतु हमने जो देखा ना लोग 14 राजू हाइट वाला है, तो सात राजू सिंगल लाइन में एक पंक्ति जो प्रदेशों की लेना है तो उसमें जो संख्या होगी जितनी असंख्यात संख्या है उसको हम जगत श्रेणी कहते हैं। सात राजू है ना, सात राजू डिवाइडेड बाय सात कितना होगा, एक राजू। सात राजू डिवाइडेड बाय सात इज इक्वल टू एक राजू। ये राजू का प्रमाण है क्या, जगत श्रेणी का सातवां भाग। फिर भी हमको राजू क्या मालूम नहीं, फिर भी यहाँ हम जगत श्रेणी की अपेक्षा उसको कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, जगत श्रेणी सप्तम भाग रज्जु, कि जगत श्रेणी के सातवें भाग प्रमाण राजु होता है, वो लास्ट में बताया उन्होंने, अभी अर्थ के गाथार्थ के लास्ट में बताया। अब वो क्या होता है, श्रेणी अपि, अब श्रेणी का प्रमाण कैसे निकालना है, तो जगत श्रेणी कैसे निकलती है, तो देखो पल्ल के अर्धच्छेदों में, अभी सबका अर्थ देखेंगे, अर्धच्छेद क्या होता है, पल्ल क्या होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। पल्ल के अर्धच्छेदों में असंख्यात का भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतनी बार घनांगुलों का परस्पर में गुणा करने पर जगत श्रेणी होती है। क्या कहते हैं, ये घनांगुल क्या होता है, अंगुल गुणा अंगुल गुणा अंगुल, जिसको हम सूक्ष्मांगुल कहेंगे। तो पल्ले का तो प्रमाण आपने बहुत बार सुना होगा, वो गड्ढा करना रोमकंडों से भरना, वो व्यवहार पल्ले है, फिर उद्धार पल्ले अद्धा पल्ले, ये तो आपने बहुत बार सुनी है।
तो ये पल्ले में अद्धा पल्ले लेने का,
हाँ अद्धा पल्ले लेना। तो हम द्विरूप एक धारा बताई थी आपको, दो का वर्ग से स्टार्ट करेंगे, चार 16 उसका वर्ग 256 उसका वर्ग 50 उसका वर्ग बादाल उसका वर्ग इकट्ठी वगैरह वगैरह आगे चलेगी गाड़ी। तो असंख्यात ऐसे स्थान जाने पर पल्ल आता है द्विरूप वर्ग धारा में, इतने मान लेते हम उसको वह कहेंगे, एक्स कहो ना, एक्स प्रमाण स्थान जाने पर पल्ल आता है। अब वो पल्ल का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग करो कितने बार, और एक्स बार, यानी उसका वर्ग स्थान 2x प्रमाण होगा। एक्स नंबर के स्थान पर पल्ल आया, अभी पल्ल का भी वर्ग वर्ग करते जाओ तो 2x नंबर का जो स्थान होगा वहां पर अंगुल आएगा, उसको अंगुल कहते हैं। पल्ल से अंगुल बहुत बड़ा माप है,
डबल
डबल नहीं। देखो देखो हमारे पास चार है, चार का वर्ग, चार का वर्ग 16 है, 16 को कितनी बार वर्ग किया, दो बार, उसका वर्ग 256, 256 का वर्ग 65536, इसका वर्ग स्थान 2 है और इसका वर्ग स्थान 4 है। दूसरे वर्ग स्थान पर 16 संख्या है, चौथे वर्ग स्थान पर 65536 है, कितना डिफरेंस है, वर्ग स्थान डबल हुआ है, ख्याल में आती है, वर्गस्थान केवल डबल हुआ। या वो भूगोल की पुस्तक थी ना, उसमें एग्जैक्ट मार्क दिए, समझने में आसान है वहाँ पर। नितिन भाई वहाँ एक कपाट है ना, वो मशीन के बाजू में, यहाँ पर लाए, हाँ हाँ यहीं पर है, हाँ जितनी बार वर्ग करने पर पल्ले आए थे ना, जिसे 16 संख्या 2 बार वर्ग करने पर आई और पनट्टी 4 बार वर्ग करने पर आई, ऐसा ही असंख्यात बार वर्ग करने पर पल्ले आया, उसके आगे असंख्यात बार, यानी पल्ले का असंख्यात बार वर्ग करो, वर्ग का वर्ग का वर्ग, तब जाके अंगुल आता है। यानी वो बहुत बड़ी संख्या है, हमें लगता है अंगुल नहीं इतना छोटा और पल्ले नहीं इतना बड़ा गड्ढा, उसमें तो रोम खंडों को गिना था हमने, है ना। हाँ, यहाँ प्रदेशों की संख्या, ये प्रदेश बहुत बहुत ही छोटा है। देखो अभी आपके हाथ में ये नहीं है, ये जगत श्रेणी का प्रमाण निकालना है, सबके हाथ में दे दे क्या? और वहां मशीन के बाजू में नया कपाट है, उसके ऊपर ऐसे ये रखे, शायद पेपर में रैप करके मुझे दिखेंगे आप। अब एक मुझे पार्टी भी देना। अभी तो बड़ा पाटा बोर्ड रखना पड़ेगा, चार ही है क्या? चार खुला था मगर ये शायद ऊपर से निकालना पड़ेगा, ले लो। नीचे नहीं मिलेगा तो कब को? अरे सुमन, उनको जरा बताना, वो ऊपर से पुस्तकें निकाली थी ना ऐसा गट्ठा, भूगोल, अरविंद भाई को नहीं समझेगा। वो पलंग पर खड़ा होके निकाल सकते ऊपर से, उधर से देखो, पेज नंबर 8 निकालो, जैन भूगोल पुस्तक आपके पास है ना? स्वाति बहन आपके पास है क्या? नहीं तो आप सुनना, अभी बाद में निकाल के देखना। चलो हम आगे पढ़ते, चलेगा। हाँ देखो, अध्याप नीचे की लाइन, लास्ट लाइन, 8 पेज पर लास्ट लाइन, अध्या पल्ले ने पल्ले। हाँ जाने दो, जाने दो, आओ आओ, सुनो सुनो, मैं इस पार्टी पर भी बैठ, पार्टी पर बैठ, आना आना, आप देख लो, 8 नंबर का पेज निकालो। अभी यहाँ एक शब्द आने वाला है, अध्या छेद, उसके लिए हम द्विरूप वर्गधारा को फिर से देखते हैं, ये पुस्तक में नहीं है। द्विरूप यानी दो का वर्ग से शुरू होता है और इस धारा में सारे वर्ग स्थान है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो दो का वर्ग है 4, एक नंबर का वर्ग है, 4 का वर्ग है 16, दो नंबर के स्थान पर, 3 नंबर के स्थान यानी इसको वर्ग शलाका कहते हैं, नंबर ऑफ वर्ग कितने बार किया, और चौथी बार वर्ग किया तो पन्नठी हम लिखेंगे, यहाँ पो लिखेंगे 65,536। अब ये पूरा नहीं लिखेंगे हम उसको, ये उसका हम एक सिंबल बना दिया, तो ये उसके वर्ग स्थान है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। इसको अर्धच्छेद किसको कहेंगे? किसी भी संख्या को कितनी बार दो गुणा करने से वो संख्या आती है, दूसरी भाषा में दो का भाग देने पर, जब तक एक नहीं आए तब तक उसको दो का भाग देना, तो कितनी बार? तो 4 संख्या दो बार गुणा करना पड़ेगा, 2×2 दो बार, तो इसका अर्धच्छेद कितना है? 2, 16 का अर्धच्छेद 4, स्क्वायर होता है तो अर्धच्छेद दुगुना होता है, 16 आता है, 256 कैसी संख्या आएगी, कितनी बार दो को गुणा करने से आपस में आती है? तो कितने? 8 बार। पन्नठी ये संख्या कितनी बार? तो 16 बार। वर्ग अर्धच्छेद, अर्धच्छेद, और अर्धच्छेद का शॉर्ट फॉर्म है 6। अब ये पॉइंट है, यहाँ पन्नठी है ना, ये पन्नठी, अभी ऐसा करते जाओ तो पल्ल्य संख्या आई, तो जो 1, 2, 3, 4 हमने नाम दिए थे वर्गों को, तो पल्ले के ऊपर हम व लिखेंगे, जो कोई संख्या है उसका नाम है व, और ये हमने 2, 4, 8, 16 ये क्या लिखे थे? अर्धच्छेद लिखे थे, तो पल्ले के अर्धच्छेद का नाम है 6, वो कितना है वो भूल जाओ, ये पल्ले के अर्धच्छेद है। अर्धच्छेद का अर्थ क्या समझ में? जितनी बार दो संख्या आपस में लिखने पर पल्ले संख्या आएगी उसको कहेंगे पल्ले के अर्धच्छेद, और उसके लिए हमने एक सिंबल बनाया उसका नाम है 6। अब आगे देखे थे, तो ये जो अध्याप आठवीं पुस्तक आठवीं पेज में लास्ट लाइन भूगोल की, अद्धा पल्ले के अर्ध छेदों के असंख्यातवे भाग बार, असंख्यातवे भाग बार यानी छह नाम की जो संख्या है ये क्या है, पल्ले के अर्ध छेदों की ये संख्या है। अब इस अर्ध छेद को भी असंख्यात से भाग देना, असंख्यात के लिए हमारे पास सिंबल है ये छह है और इसको डिवाइडेड बाय असंख्यात, ये हमारे असंख्यात का सिंबल है। इतनी बार क्या करना है, कोई अभी संख्या हम लिखेंगे इतनी बार उसका आपस में गुणा करेंगे, इतनी बार कौन सी संख्या लिखने हैं, तो अद्धा पल्ले के अर्ध छेदों के असंख्यातवे भाग बार घनांगुल को लिखना। ये घनांगुल क्या होता है, हमने जो अंगुल देखा था हाँ सुचंगुल इंटू सुचंगुल इंटू सुचंगुल, उसको घनांगुल कहेंगे। हाँ वो दो वो उसके वर्गशाला का आ जाएगी। ये हमने देखा प को आगे हमने बढ़ाते गए तो जिस स्थान पर वो दो बार आता है दो वो वहां पर जो संख्या आएगी उसको हम अंगुल कहेंगे और अंगुल का घन घनांगुल कहेंगे। हाँ तो ये जो घनांगुल है हम अभी उसको घनांगुल कहेंगे, नहीं 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 वो अंगुल है, अंगुल इंटू तो घनांगुल जो आएगा, ये घनांगुल कितनी बार लिखना है देखो, यानी अभी हम उसको घ कहेंगे आपको समझने के लिए, वहाँ उसकी संदृष्टि अलग है, आपको समझाने के लिए घ इंटू घ इंटू घ कितनी बार करना है, कितनी बार लिखकर आपस में गुणा करना, तो जब हम पल्ले के अर्ध छेदों के असंख्यातवे भाग बार इतनी बार लिखो आपस में गुणा करो, घनांगुल इंटू घनांगुल इंटू घनांगुल इंटू घनांगुल पल्ले के अर्ध छेद के असंख्यातवे भाग बार लिखो और आपस में गुणा करो तो जगत श्रेणी का प्रमाण आता है। जगत श्रेणी फिर डिवाइडेड बाय सात इज इक्वल टू एक राजू, हाँ देखो अभी इसके लिए संदृष्टि बनाइए और उसके भी संख्या बताइए। देखो यहाँ आगे यही बात समझाई वहां पर, किसी संख्या को जितनी बार दो का भाग दे सकते हैं उसको उस संख्या का अर्धच्छेद कहते हैं, ये तो मैंने अभी बताया। जैसे 16 संख्या का अर्धच्छेद 4 है, क्योंकि चार बार दो लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो हमें 16 संख्या आती है। यहाँ अंक संदृष्टि अभी शब्द आया था ना, यानी काल्पनिक संख्या मानकर समझाते हैं। यदि हम पल्ले को 16 मानेंगे, पल्ले के अर्धच्छेदों का असंख्यात भाग है ना, पल्ले को हमने 16 मान लिया तो उसके अर्धच्छेद बार यानी चार बार पल्ले को लिखकर परस्पर गुणा करने से सुचंगुल या अंगुल आता है। देखो ये भी बात बताएं, ये क्या कहना चाहिए, हमने 16 माना, किसको 16 माना हमने, हाँ पल्ले को हमने 16 माना, जैसे हमने ये 16 पल्ले 16 माना, उसके अर्धच्छेद आते चार, तो हमको दो वो चाहिए ना, ये वो यानी इसके ये भी एक रूल है, जो अर्धच्छेद है अभी वो समझाने जाऊंगी तो आपको कंफ्यूजन होगा, अभी केवल यहाँ इतना समझो। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, अर्धच्छेद के अर्धच्छेद निकालना, मैं ये चार फिगर पर ही बता रही हूँ, ये पहली संख्या चार है, पहला वर्ग चार है, फिर पहले से सोचना दूसरा वर्ग है 16, तीसरा वर्ग है 256, चौथा वर्ग है 65, 16 का अर्धच्छेद है चार और चार का अर्धच्छेद क्या है दो, तो दो है ना, तो यहाँ क्या कहेंगे, तो दो बार देखो चार महीने उसके अर्ध छेद बार अर्थात चार बार पल्ले को लिखकर परस्पर गुना करने से सूचंगुली अंगुल आता है, यानी इसको 16 को चार बार लिखकर आपस में गुना करने से अंगुल आता है। हमारे यहाँ पनठी आती है, अर्ध छेद बार गुना करने से अंगुल आता है। पल्ले को पल्ले के अर्ध छेद बार रखकर गुणा करने से अंगुल आता है। यहाँ तक बात ख्याल में आई? देखो अर्ध काल्पनिक संख्या मानकर समझो, यदि हम पल्ले को 16 मानेंगे तो उसके अर्ध छेद बार यानी चार बार पल्ले को लिखकर परस्पर गुणा करने से सूचंगुल या अंगुल आता है। उसी को सूचंगुल कहा, उसी को अंगुल कहा। 16 × 16 × 16 × 16 65,536 इसी को पनट्टी कहते हैं। यहाँ तो बात ख्याल में आई ना? ये तो हमने संदृष्टि बनाई है, एक्चुअल फिगर नहीं है, हमने मान लिया है। अंगुल का घन घनांगुल है इसलिए पनट्टी का घन घनांगुल मानते हैं। अभी पनट्टी का घन घनांगुल जो कहेंगे ना हम, देखो पनट्टी के लिए ये चिन्ह है, 65,000 से शुरू होता है ना, ये पनट्टी है, पनट्टी इंटू पनट्टी इंटू पनट्टी। इसको दूसरी भाषा में लिखना है तो पनट्टी इंटू पनट्टी को एक एक फिगर कौन सी लिखेंगे? बादल। ये हमने जो 4 16 256 पनट्टी लिखा था उसके आगे बादल और इकट्ठे ऐसे स्थान है, तो पनट्टी इंटू पनट्टी के लिए हम बादल लिखेंगे। बादल की संदृष्टि कैसी है? 42 से शुरू होती है, 42 एक्सेट्रा। तो बादल इंटू पनट्टी ये हमारी संदृष्टि आ गई। हाँ यहाँ पर अपनी, क्योंकि हमने 16 को पल्ले माना था तो बादल इंटू पनट्टी को हमें अंगुल मिलेगा, घनांगुल मिलेगा, नहीं अंगुल मिलेगा, घनांगुल मिलेगा, सॉरी घनांगुल बराबर। पनट्टी कहते हैं अंगुल का घन घनांगुल है, इसलिए पनट्टी का घन घनांगुल मानते हैं। अब हमारी फिर से वो संख्या पढ़ना, 8 पेज के लास्ट लाइन वाली, पल्ले के अर्ध छेदों के, हमने पल्ले माना 16 को, उसके अर्ध छेद हो गए 4, उसका असंख्यात भाग हम 2 मानेंगे, है ना, हम उसको असंख्यात भाग यानी 2 मानेंगे। ये दूसरा भाग, हमारे पास इतनी बड़ी फिगर कहाँ लेंगे हम, असंख्यात भाग यानी दूसरा भाग हम उसको 2 मानेंगे। पल्ले के अर्ध छेद 16 के अर्ध छेद 4, उसका असंख्यात भाग 2, ये हमने मान लिया है। उतनी बार घनांगुल को लिखना है, ये घनांगुल क्या है? बादल इंटू पनट्टी हमारा घनांगुल है, उसको 2 बार लिखना है। नहीं नहीं इतना 2 बार लिखना है, और आपस में गुणा करेंगे। तो देखो इतनी बार पनट्टी का घन लिखकर परस्पर गुणा करने से पनट्टी का घन इंटू पनट्टी का घन आएगा। ये हमने पनट्टी का घन ही बताया था ना, उसको बाद में हमने बादल कर दिया। ये पनट्टी है, ये उसके रेस टू 3, ये उसका घन आया, उसको पनट्टी के घन से ही गुणा करना है। तो फिर हम पनट्टी के घन से उसको गुणा करेंगे, पनट्टी का घन मल्टीप्लाइड बाय पनट्टी का घन, ये मल्टीप्लाइड बाय, ये उसकी साइन है। ये संदृष्टि अभी आपको सीखना पड़ेगी, तो ये सारा सरल होगा। पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के बदले उसको रखेंगे हम चिन्ह में। आप संदृष्टि में नहीं थी ना, यहाँ पर जीवकांड में हो? अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ तक समझे में? जब हमने पल्ले को 16 मान लिया, 16 माना था पल्ले को, तब अंगुल आया था 65 का घन घनांगुल। तो पल्ले के अर्ध छेद के असंख्यातवे भाग बार घनांगुल को रख कर आपस में गुणा करेंगे तो क्या देखो? तो इसको हम कहेंगे श्रेणी। हमने पल्ले को 16 माना तब यह जगत श्रेणी का प्रमाण आया। क्या? पनट्टी का घन इंटू पनट्टी का घन। जब हमने 16 को माना था पल्ले, तब एक्चुअल पल्ले कितनी बड़ी संख्या है यथार्थ में? अब ये यथार्थ की बात करें, यथार्थ में तो पल्ले मध्यम असंख्यात असंख्यात का एक भेद है। देखो हमने असंख्यात के भेद देखे थे, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात असंख्यात। परिता संख्यात यानी वो अनवस्था कुंड वगैरह की बात अभी आने वाली है। परिता संख्यात को परिता संख्यात बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो युक्ता संख्यात आता है, जघन्य युक्ता संख्यात, जघन्य युक्ता संख्यात इंटू जघन्य युक्ता संख्यात, जघन्य असंख्यात असंख्यात आता है। और ये कौन सा पल्ले है, तो मध्यम असंख्यात असंख्यात का भेद है। तो हमने ये इमेजिन कर सकते ना कितनी बड़ी संख्या होगी, कि पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यात वे भाग बार घनांगुल को लिखकर आपस में गुणा करने से जगत श्रेणी का प्रमाण आता है। यहां तक बात ख्याल में आई? जगत श्रेणी अर्थात सात राजू, इसे सात का भाग देने पर एक राजू का प्रमाण आता है। यानी यथार्थ में यह प्रमाण कितना बड़ा होगा थोड़ा सोचना। तो यथार्थ में अब यहां लिखा है पल्ले इंटू पल्ले इंटू पल्ल, कितनी बार, पल्ले के अर्धच्छेद बार, तब जाके सुच्चंगुल आता है। ये हमने आपको 16 के द्वारा समझाया था। सुच्चंगुल इंटू सुच्चंगुल इंटू सुच्चंगुल इज इक्वल टू घनांगुल। अब ये घनांगुल को कितनी बार लिखना है, तो पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यात भाग बार लिखना है। तो घनांगुल इंटू घनांगुल इंटू घनांगुल कितने बार लिखना, पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यात भाग बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो जगत श्रेणी का प्रमाण आता है। और जगत श्रेणी को मात्र सात से डिवाइड करेंगे तो सात, सात राजू है ना, सात राजू डिवाइडेड बाय सात इज इक्वल टू एक राजू। तो एक राजू का इतना प्रमाण है। और इस राजू में हम लोक की वो सारी डायमेंशंस देखते हैं, 14 राजू है, सात राजू, एक राजू, जो कुछ कहते हैं वो इसमें होता है। मध्य लोग भी कहेंगे हम उसे ऐसा विस्तार एक राजू है, तो इतना बड़ा होगा ये। देखो यहाँ पर भी ये जो लिखा है ना, ये उर्ध मेरु तल से सात राजू ऊंचा उर्ध्वलोक है, मेरु तल से नीचे सात राजू, यानी वो 1000 नीचे से शुरुआत होता है उसका पॉइंट, मिड पॉइंट, वो बात आएगी आगे कहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अभी ये संदृष्टि समझने के लिए आपको आसान हो जाएगी। पल्ले गाथार्थ देखो, पल्ले के अर्धच्छेदों में असंख्यात का भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतनी बार घनांगुलों का परस्पर में गुणा करने पर जगत श्रेणी होती है। और जगत श्रेणी के सातवें भाग प्रमाण राजू होता है। अभी हमने आपको जो बताया था ना, ये घन इंटू घन। अब यहां ऊपर संस्कृत देखो, जग अंक संदृष्टि प्रदर्शन द्वारे न गाथार्थो विव्रियते जगत श्रेणिया। हाँ, जगत श्रेणी कितना है, तो जगत श्रेणी का सातवां भाग, वो डिवाइडेड बाय सात छोड़ दो, ऊपर क्या लिखा है 18 ने, वो इकट्ठी है और आगे बादल है। और यहाँ तो हमने कुछ अलग ही देखा था, हमने क्या देखा था, पनट्ठी का घन इंटू पनट्ठी का घन, यानी जो ये पनट्ठी हमने 6 बार लिखेंगे तो उसका अर्थ ये होगा। तो पनट्ठी का घन हमने क्या किया था, देखो पनट्ठी का घन का अर्थ होते क्या है, बादल इंटू पनट्ठी, हम बा और प लिखेंगे, बादल इंटू पनट्ठी, और दूसरी बार वही को लेना इंटू बादल इंटू पनट्ठी। बादल का वर्ग क्या होता है, इकट्ठी, ये बादल और ये बादल, इसको हम इकट्ठी कहेंगे, इकट्ठी के लिए 18 लिखते हैं, और पनट्ठी इंटू पनट्ठी बादल, इसको बादल लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा है देखो, देखो यहाँ डायरेक्ट ये टीकाओं में डायरेक्ट संदृष्टि बताई जाती है, उसके अर्थ कहीं पर किसको क्या कहना क्या। अभी जो पहले पढ़ रहा है ना, ये देखो देखो, पनट्ठी का घन इंटू पनट्ठी का घन हमने देखा था, जब हमने पल्ले को 16 माना था तो अंगुल का प्रमाण आता था पनट्ठी का घन,
पनट्ठी का घन,
और पनट्ठी के घन को हमने 2 बार गुणा किया था आपस में,
हाँ,
पनट्ठी का घन इंटू पनट्ठी का घन। अभी उसको हमने खोल कर लिखा, ये पनट्ठी का घन है, बादल इंटू पनट्ठी, और उसको बादल इंटू पनट्ठी, तो बादल इंटू बादल, उसको एकट्टी कहेंगे और पनट्टी इंटू पनट्टी को बादल कहेंगे। तो ये पनट्टी का जो रेस टू सिक्स था घन इंटू घन, उसको हमने सॉल्व करके यहाँ क्या लिखा, इकट्ठी इंटू बादल। तो यहाँ डायरेक्ट लिखा है, देखो ये ना जगत श्रेणी का इकट्ठी इंटू बादल डिवाइडेड बाय सात। इसमें कुछ अंक संदृश्य तो बता दिया, ये कैसे निकला क्या निकला ये कुछ हमको पता नहीं चलता है। ये टोडरमिजी साहब की विशेषता थी कि उन्होंने ये सारों को समझाया, किसको क्या कहना किसको क्या कहना है, वो कैसे निकालना। ये 18 इज इक्वल टू, इसको 18 प्रवृत्ति है, ये इकट्ठी है और ये बादल है, ये तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है। ये ऐसा ही पढ़ते गए तो हमें क्या उसमें से कुछ समझ में नहीं आता। देखो ये गाथार्थ है, गाथार्थ पढ़ेंगे पल्ले के, ये हमने पढ़ा था अभी ना। विशेषार्थ, जगत श्रेणी के सातवें भाग को राजू कहते हैं। जैसे जगत श्रेणी का प्रमाण बादल से गुणित इकट्ठी, बादल ने वो पनट्टी को उन्होंने रेस टू फोर कर दिया, इंटू पनट्टी रेस टू टू कर दिया, उसमें सात का भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो वह राजू का प्रमाण है। अथवा इकट्ठी इंटू बादल डिवाइडेड बाय सात राजू का प्रमाण प्राप्त होता है। यानी उसमें वो क्लैरिटी नहीं होती है कि हमने मान लिया है पल्ले को 16। आगे बताएंगे शायद। देखो जगत श्रेणी का प्रमाण पल्ले के अर्धच्छेदों में, ये अर्धच्छेद क्या होता है हमने आपको अभी बताया, यानी दो इंच दो इंच दो जितने बार कर सकते हैं उसको अर्धच्छेद कहेंगे। तो पल्ले के अर्धच्छेदों में असंख्यात का भाग देने पर जो एक भाग आवे उतनी बार घनांगुलों को परस्पर में गुणा करने पर जगत श्रेणी का प्रमाण प्राप्त होता है। ये तो यथार्थ की बात बताई एक्चुअल में। अब कहते मान लो अंक संदृष्टि में, अंक संदृष्टि ने काल्पनिक संख्या में पल्ले का प्रमाण 16, असंख्यात का प्रमाण 2 और घनांगुल का प्रमाण बादल इंटू पनट्टी। तो ये घनांगुल कैसे आया वो यहां उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्ट उसकी संदृष्टि बना दी, जो मैंने अभी भूगोल के पुस्तक में से आपको बताया था कि जो पल्ले के अर्धच्छेद है उतनी बार पल्ले को लिखकर आपस में गुणा किया था तब अंगुल आया था, है ना, और फिर अंगुल का हमने घनांगुल किया था। तो उन्होंने डायरेक्ट उसकी संदृष्टि लिखा। अथवा 65,536 का घन, जिसको हम पनट्टी का घन कहेंगे, अतः पल्ले ने 16 के अर्धच्छेद 4 डिवाइडेड बाय असंख्यात ने 2, वो लब्ध 2 आया, इसलिए दो बार घनांगुलों को पनट्टी के घन को परस्पर गुणा करने पर जगत श्रेणी का प्रमाण प्राप्त होता है। अर्थात ये जो पनट्टी का घन बताया उन्होंने, एक बार पनट्टी लिखी एक बार पनट्टी का स्क्वायर लिखी तो घन हुआ, फिर मल्टीप्लाइड बाय वही घन लिखा के, तो उसका उत्तर कितना आता है, पनट्टी का स्क्वायर इंटू पनट्टी रेस टू 4, जो हमने अभी आपको पार्टी पर बताया था। तो उसी का अर्थ होता है बादल गुना इकट्ठी। अथवा बादल के लिए संदृष्टि क्या है, वो फिगर 42 से चालू होती है इसलिए 42 आदि प्रवृत्ति उसको नाम गई, और आगे वो पनट्टी 65,000 से शुरू होती है उसके संदृष्टि 65 बादल इंटू इकट्ठी, इकट्ठी चाहिए एक 8 चाहिए, नहीं वो दोनों को मिलकर बादल इंटू इकट्ठी, अथवा वो ऊपर की उन्होंने फिगर बताई देखो ये पनट्टी का घन है, बादल इंटू पनट्टी इंटू बादल इंटू पनट्टी, ये किया है, बीच वाली वो स्टेप है,
बराबर है ये बस।
बादल इंटू इकट्ठी अथवा अथवा क्या कहा, बादल इंटू पनट्टी इंटू बादल इंटू पनट्टी, इसमें से बादल इंटू बादल इकट्ठी हो जाती है और पनट्टी इंटू पनट्टी बादल हो जाती है, यही बात है ना, वही तो बताया था आपको। यहाँ सूक्ष्मांगुल पनट्टी है और घनांगुल पनट्टी का घन है, और ये हमने सूत्र देके आपको बताया था, कैसा सूत्र थे कि 16 का अर्ध छेद है, इन्हें 16 पल्ले माना, पल्ले के अर्ध छेद बार, पल्ले के अर्ध छेद बार पल्ले को लिखकर आपस में गुणा करने से अंगुल आता है, अंगुल इंटू अंगुल इंटू अंगुल घनांगुल आता है। अब इस घनांगुल इंटू घनांगुल इंटू घनांगुल पल्ले के अर्ध छेद के असंख्यातवे भाग बार करने पर जगत श्रेणी आती है, जगत श्रेणी कहाँ, अभी आया ना राजू, अभी भूलेंगे नहीं। अब आगे देखते हैं, 8 नंबर का हम देखेंगे। अथ वृंदांगुल प्रतिपत्ति अर्थम आह, प्रतिपत्त्यर्थम आह, यानी अब घनांगुल का स्वरूप बताते हैं, ये क्रम से जा रहे आगे, उन्होंने पहले बात स्टेटमेंट कर दिया, अब घनांगुल मालूम नहीं तो घनांगुल को अब बताएं, हमने उल्टे पद्धति से आपको बता दिया। पल्लच्छिदिमित्त पल्लाणन्नोन्नहदीये अंगुलं सूई तौवग्गघणाकमसो पदरघणाङ्गुलसमखादो पल्लच्छेदमात्र पल्लानामन्योन्यहत्या अंगुलं सूची तद्वर्गघणौ क्रमशः प्रतरघणाङ्गुले समाख्याते। समाख्याते ने बताते हैं क्या है, पल्यच्छेद ने पल्य के अर्धच्छेद मात्र, पल्यानाम अन्योन्य हत्या अने पल्य के अर्धच्छेद मात्र ने पल्य के अर्धच्छेद बार पल्यानाम ने पल्य को अन्योन्य हत्या ने एक भी दूसरे में गुणा करने पर अंगुलम सूची, सूची अंगुल ने सूच्यंगुल आता है। तद वर्ग घनौ क्रमशः प्रतर घनांगुले समाख्याते, यानी जो सूच्यंगुल है उसके वर्ग को और घन को क्रमशः प्रतरांगुल और घनांगुल कहते हैं। देखो यहाँ अभी हिंदी में पढ़ेंगे, अब घनांगुल का स्वरूप बताते हैं। हाँ, वृंदांगुल का अर्थ होते घनांगुल। अब घनांगुल का स्वरूप बताते, ऊपर बताए ना वृंदांगुल प्रतिपत्त्यर्थमाह, तो पल्ल्य के जितने अर्धच्छेद होते हैं, ये शुरू में अर्धच्छेद क्या वर्गशाला का थोड़ा कंफ्यूजन होगा, परंतु वर्गशाला ने जो नंबर ऑफ वर्ग उसका उसको वर्गशाला का कहते हैं, और जो जितनी बार दो संख्या को आपस में गुणा करेंगे उसको अर्धच्छेद कहेंगे। एक ट्रिक बताऊ आपको, विरूप वर्गधारा की, ये बहुत काम में आने वाली चीज है आगे, और ये याद नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, अभी सुन तो लो। हमने क्या देखा, 4, 16, 256 पनट्टी, उसके वर्गस्थान 1, 2, 3, 4, इसको वर्गस्थान वर्गशलाका कहते हैं, उसके अर्धच्छेद 4 का 2 है, इसके 4 है, इसके 8 है, इसके 16 है, किस कोई संख्या कौन से वर्गस्थान पर है निकालना है, ये 16 संख्या दूसरे वर्गस्थान पर है, तो 16 का हमें अर्धच्छेद मालूम है 4, 4 का अर्धच्छेद 2, ये उसका वर्गस्थान है, पनट्टी का अर्धच्छेद 16, 16 का अर्धच्छेद 4, अर्धच्छेद का अर्धच्छेद वर्गशाला का होती है,
अर्धच्छेद का
है ना, ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स बताते जाएंगे आपको, ये थोड़े उसके अर्थ क्या है, अर्धच्छेद क्या है, थोड़ा कभी कभी क्या है थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा कि नहीं इसको अर्धच्छेद कहा था, बार बार सुनेंगे तो अब याद हो जाएगा। आज तो पहली बार सुन रहे हैं ना आप, आई थी बहुत अच्छा। अच्छा आप भूगोल के शिविर में भी आई थी, वो उसको बहुत साल हो गए, अभी उसको 8 साल हो गए, 2006 में हुआ था अपना भूगोल का शिविर, जून में, जून में जून में, जून 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 था, हो गया अभी समय, कल पढ़ेंगे इसको गाथा सब, घनांगुल का स्वरूप फिर दोबारा देखेंगे तो कल अपना पक्का हो जाएगा। हाँ जावानी के ज्ञान तय तुझे लुकालो, सोवानी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विन भाई नमो।